वचनों की कीमत है, क्योंकि इन वचनों को यथार्थ कहा गया है, कल्याणकारी कहा गया है, और इनकी जो कदर करता है और इनको जीवन में स्थान देता है वो खुद भी लाभ लेता है, औरों के लिए भी वो वरदान बन जाता है। इसलिए महापुरुष संत जन अमलीक लाल ये रतन इन बोलों को कहते हैं कि वाकई ही इनकी बहुत कीमत है। ये केवल बोल नहीं है, केवल शब्द नहीं है, केवल किसी धुन पे गाया हुआ कोई अभंग या भजन या फिर कोई गीत नहीं है। ये वास्तविकता में जो बोल हैं वो प्रेरित करते हैं हमें एक सत्य के मार्ग पर चलने की, भक्ति भरा जीवन जीने की, इंसानियत और मानवता का रुतबा बुलंद करने के लिए। तो इस तरह से आज महापुरुष संत जन ये योगदान दिए चले जा रहे हैं, और युगों युगों से संतों गुरु पीर पैगंबर और महापुरुषों ने ही ये योगदान इस प्रकार का दिया है। वरना तो संसार में संसारिक खेल खेलने वाले, केवल संसारिक प्रवृत्तियों से युक्त होकर जीने वाले, जुल्म सितम अभिमान और अंधकार में जीवन जीने वाले, उनकी भी देन रही है, लेकिन वो सब हानिकारक अपने लिए और औरों के लिए, और धरती को भी बदसूरत बनाया। तो इसलिए संतों महात्माओं ने युगों युगों से संसार को खूबसूरती देने के लिए ये पैगाम दिए, ये देन दी, और जो अंधकार में जीवन जीने वाले उनकी बदसूरती नज़र आई, जिन्होंने बिगाड़ पैदा किया, धरती को पलीत किया, विषैलापन सोच में, ख्यालों में, व्यवहार में, और बाहर भी वही जहर घोलते चले गए, और इस तरह से वो अंधकार के रूप वो बिगाड़ पैदा करते रहे। तो महापुरुष जो प्रेरणा देते हैं जिस मार्ग पर चलने की, जीवन की शोभा बनाने के लिए, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, वो है यही चाल, जो एक इंसानियत वाली चाल चलनी, प्यार के साथ जीना, सुकून और चैन औरों को भी देना, दूसरों के लिए एक सुख के साधन बनना, गिरे हुए को उठाना, दूसरों को हंसी प्रदान करनी, अगर आंखों में आंसू आए हैं तो उनको पहुंचना, इस प्रकार से जो जीवन जीते हैं वो वास्तविकता में एक उनकी कीमत होती है, उनकी एक उनका एक स्थान होता है ऊंचा, जो इस प्रभु की निगाह में, इस हरि की निगाह में उनका एक ऊंचा रुतबा ये हुआ करता है। तो अवसाद संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जन वो यही संदेश हर मानव को ये दिए चले जा रहे हैं कि ये जीवन हम जी रहे हैं, सीमित सा समय हमें मिला है, ये जीवन यात्रा हम तय कर रहे हैं, ये मालूम नहीं कि कितनी देर हमने इस शरीर में रहकर इस धरती पे विचरण करना है। तो इसलिए इसका हम एहसास करें कि वाकई सीमित से पल मिले हुए हों, और उसको हम किस ढंग से बिताएं, किस तरह से हम इन लम्हों को, इन पलों को हम बिताएं, ये वास्तविकता में ये एहसास हर इंसान को करना है। यहाँ पर ये जो समय हमें मालिक ने बख्शा इस जीवन की यात्रा को तय करने के लिए, तो इसको हमने पूरा पूरा उपयोगी बनाना है, निरर्थक नहीं, उपयोगी बनाना है, मीनिंगफुल। ऑल द मोमेंट्स वी स्पेंड हैव टू बी मीनिंगफुल, इसका कोई मोल हो, इसके कोई उपयोगिता हो, व्यर्थ नहीं, यूं ही नहीं कि बस सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर जा रहा है, बस यही श्वासों की लड़ी नहीं, श्वासों की लड़ी बेशक चल रही है, लेकिन श्वास लेना और श्वास छोड़ना पावनता और पवित्र भावनाओं से युक्त होकर, इस प्रकार से हमारा उठना बैठना चलना फिरना वो एक नेकी के साथ, बदी के साथ नहीं, प्रेम के साथ, नफरत के साथ नहीं। इस तरह से महापुरुष संत जन वो एक संदेश, ये प्रेरणा ये हर मानव हर इंसान को ये देते चले आ रहे हैं, लेकिन किसने इसकी कदर की और किसने अपनाया, किसने इसको जीवन में स्थान दिया, ये उस पर निर्भर करता है। नदी बहने को बह रही है, लेकिन निर्भर करता है इंडिविजुअल्स के ऊपर, क्या वो नदी के जल से लाभ उठाना चाहते हैं, क्या वो नदी के जल से अपने बदन को भिगोकर साफ सुथरा होना चाहते हैं, क्या नदी के जल से वो अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, क्या वो नदी के जल से सूखे हुए धरती के टुकड़ों को सींच कर पानी से उसको जरखेज बनाना चाहते हैं, अनाज लेना चाहते हैं, या फिर वो नदी से कोई नाता नहीं जोड़ेंगे, उस जल का कोई भी उपयोग नहीं करेंगे। तो इसमें नदी का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ये तो इंडिविजुअल्स और इंसान उनका ही सवरना या बिगड़ना है। तो इसलिए महापुरुष संत जन वो ये एक संदेश हर मानव को दिए चले जा रहे हैं कि मानव तो अपना भला कर ले, अभी भी भलाई की कामनाएं की गई, और साथ में ये कहा गया कि इन भावनाओं से युक्त होंगे तो हमारा भी भला और औरों का भी भला करने वाले हम बन जाएंगे। जो जो भी इस भावना को अपनाएगा वो ही अपना भला करता चला जाएगा। इस तरह से ये प्रेरणा ये महापुरुष संत जन ये दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि म्यार ऊंचा हो हमारा, हम ऊंचाइयों को छुएं। दुनियावी प्रगतियां हमने की और दुनियावी प्रगतियां की और उस हिसाब से हमने सोचा कि हम प्रगति कर रहे हैं, ऊंचाइयों तक हम पहुंच गए हैं, और ज़्यादा ऊंचा हमने पहुंचना है। पहले हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए सीमित से साधन थे, अब और ज़्यादा हमने जुटा लिए हैं और हम ऊंचे हो गए हैं। पहले मैं किसी साधारण से मकान में रहता था और आज एक ऐसे फ्लैट में रहता हूँ या एक ऐसे विला में रहता हूँ जो एक्सक्लूसिविटी उसमें बनी हुई है, प्राइवेसी बनी हुई है, बहुत वहाँ पर वातावरण सुंदर है, तो अचीव किया है, कुछ बेहतर हुआ है, कुछ ऊपर उठा हूँ, बिजनेस की एक्सपेंशन की है मैंने और वो नेटवर्क मैंने बहुत बढ़ा लिया है, उस हिसाब से मैं नीचे से ऊपर उठ गया हूँ। पहले एक साधारण मोहल्ले में कुछ मैं प्रधानगी करता था, अब मैं बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों हाई लेवल्स पे पहुँच गया हूँ, उस जगह को मैंने छू लिया है। तो हर लिहाज से पहले मैंने एक डिग्री हासिल की थी, आज मैं 6-6 डिग्रियाँ कर चुका हूँ, मैंने PhD भी कर ली, मैंने DLIT भी कर ली और मैंने बहुत और कुछ अचीव किया है। तो ये सारे पैमाने हमने मान लिए कि नीचे से ऊंचे हो गए हैं। तो इस तरह से एक दुनियावी उपलब्धियां वो बस यही है कि पहले बूट पॉलिश और अब सर की मालिश कर रहे हैं, ये कोई प्रगति नहीं है, ये कोई ऊंचा उठना नहीं है। ऊंचा उठना उसको कहा जाता है जब हम मानव के रूप में पैदा होकर मानवीय गुणों से युक्त हो जाते हैं, हम इंसानियत की चाल चलने लग पड़ते हैं, वो वास्तविकता में असली ऊंचाई को छूना है, वो है प्रगति, वो है अचीवमेंट। कि वाकई हमने इस प्रकार की भावनाओं को अपना लिया है, ऐसी चाल हम चल रहे हैं। ये संत महात्मा भक्तजन इसको ही उपलब्धि मानते हैं। दिस इज व्हाट हैव टू बी अचीव्ड बाय वन एंड ऑल। हर किसी ने ये कदम उठाने हैं, हर किसी ने इन सुंदर भावनाओं से युक्त होना है, धरती के लिए वरदान बनना है, मानवता के लिए एक फखर बनना है। इस प्रकार से हर किसी के जीवन में ये रूपांतरण आए, ये रूपांतरण आए, ये तब्दीली हो, इस तरह से ये ऊंचाइयों को छूते चले जाएं। एक नहीं, दो नहीं, हर कोई ऐसी ऊंचाई को छुए, और इस तरह से इंसान का इस रूप में ऊंचाई को जब छूना होगा तभी ये धरती स्वर्ग बनेगी, वरना तो नरक बनाने में पूरे जोर लग ही रहे हैं कि इसको और ज़्यादा बदतर बनाया जाए, क्योंकि खुद अपने मियार से गिरता जा रहा है, खुद विपरीत भावनाओं से युक्त है, खुद लोभ लालच से युक्त है, खुद विषयों विकारों में पड़ा हुआ है, खुद दमन कार्य करता चला जा रहा है, पूरी तरह से एक्सप्लॉयट जितना कोई किया जा सकता है, जितना कोई किसी को निचोड़ा जा सकता है, कितना कोई किसी को भय कर देकर जोर ज़बरदस्ती से अपना उल्लू सीधा किया जा सकता है, अपनी पोजीशन स्थापित की जा सकती है, तो उस लिहाज से जो किया जा रहा है वो तो हानिकारक है, वो तो दोजख बना रहा है, वो तो बदतर बना रहा है हालात को और सारे वातावरण को, इस धरती को। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन ये कह रहे हैं कि जब अपनी प्रवृत्तियों में तब्दीलियां आ जाएंगी, जब अपने मन की सुंदरता बन जाएगी, जब अपनी चाल को हम एक सुंदर बना लेंगे, तो फिर हम इस धरती को सुंदर बनाने में योगदान देने वाले बन जाएंगे। और इस तरह से एक एक इकाई, एक एक यूनिट, और जब एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, और फिर कलेक्टिव वे में हम देखेंगे, सामूहिक रूप में देखेंगे, तो फिर एक से अनेक, अनेकों में सुंदरता और उसमें इजाफा और उसमें फैलाव, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता धरती के रूप को सुंदरता मिल जानी। तो इस रूप में भी अगर देखें तो जहाँ जहाँ पर भी सवरना हो रहा है, यानी कि भावनाओं का सवरना हो रहा है, वो फिर चाहे मराठी है, चाहे महाराष्ट्र में रहने वाला है, गुजरात में रहने वाला है, राजस्थान में रहने वाला है, कश्मीर में रहने वाला है, या तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में रहने वाला है, आसाम में रहने वाला है, या फिर मिडल ईस्ट में रहता है, या वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहता है, या फार ईस्ट कंट्रीज़ में रहता है, वो किसी मुल्क में रहने वाला है, किसी संस्कृति में रहने वाला है, कोई भी भाषा बोलने वाला है, कोई भी पहरावा पहनने वाला है, उससे कोई सरोकार नहीं है, वास्तविकता में उसका सवरना हो गया है, उसकी भावनाओं का सवरना हो गया है, उसकी सोच यूनिवर्सल हो गई है, उसकी सोच में संकीर्णता नहीं रही है, भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, कदूरत नहीं है, विष नहीं है घोला हुआ मन में, उसमें एक सुंदरता आ चुकी है। अब वो फिर किसी मुल्क का वासी है, किसी जगह पे रहता है, तो वो एक देन भी देगा तो वो सुंदर देन देगा। तो औसा संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जन वो आज भी यही चेतावनी दे रहे हैं, इससे पहले कि देर हो जाए, उससे पहले पहले इंसान ये समझ हासिल कर ले। अब नहीं समझेगा तो कब समझेगा? और इंसान के रिकॉर्ड या इंसान की फितरतों को देखें, डाउन द लाइन पीछे मुड़ के देखें और जहाँ तक हम 21वीं सदी में पहुँच चुके हैं उस हिसाब से देखें तो इतने इतने युग बीत गए, इतनी इतनी सदियाँ बीत गईं और 21वीं सदी तक पहुँच भी गए, लेकिन उस हिसाब से अभी सवरना ना हो पाया है। उस हिसाब से देखें तो अभी उभर नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये मानव जाति ये कब से धरती पे चल रही है और होने को गुरु पीर पैगंबर किस युग में नहीं हुए हैं, महात्मा संत किस युग किस सदी में नहीं हुए हैं। हर दौर में ऐसी शिक्षाएं देने वाले देते आए हैं। कभी संत तुकाराम जी का रूप बन जाते हैं, कभी नामदेव जी का रूप बन जाते हैं, कभी नरसिंह मेहता का रूप बन जाते हैं, कभी कबीर का रूप बन जाते हैं, कभी रविदास का रूप बन जाते हैं, कभी मीराबाई का रूप बन जाते हैं, कभी भगवान राम का रूप बन जाते हैं, भगवान कृष्ण का रूप बन जाते हैं, कभी हज़रत मोहम्मद साहब हज़रत ईसा मसीह जी का रूप बन जाते हैं, कभी श्री गुरु नानक देव जी महाराज का रूप बन जाते हैं, कभी बौतन्ना जी का रूप बन जाते हैं। यानी कि अनेकों अनेकों रूपों में संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर इंसानों को जगाते आए, इंसानों को एक सही सोच प्रदान करते रहे, इंसानों को ये जागृति ये प्रदान करते रहे और साथ ही साथ चेतावनियाँ भी देते रहे कि ये चेतावनी मत सहसा रह जाए, ये चेतावनियाँ भी देते रहे। ए वर्ड ऑफ कॉशन जिसको हम कहते हैं चेतावनी, कि अगर इंसान अभी भी नहीं संभलेगा तो फिर तेरा संभलना मुमकिन नहीं होगा। क्या गाय घोड़ा बनकर जाके संभलेगा, या बकरी या सुअर बन के संभलेगा, या फिर कोई और योनि में जाकर संभलेगा? अगर अभी नहीं संभला तो, जबकि सबसे ज़्यादा सोचने और समझने की ताकत मालिक ने तुम्हें बख्शी है, किसी और योनि को नहीं बख्शी इतनी सोचने की और समझने की ताकत जितनी इंसान को बख्शी है। और सबसे ज़्यादा अगर समझने की सामर्थ्य दी गई है और अगर अब भी नहीं समझा तो फिर किस योनि में समझेगा? इसलिए ये भी चेतावनी देते हैं कि हे इंसान, अभी भी अगर तू नहीं संभला है तो संभल जा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अब कछु बिगड़ियो नाही अब हूँ जाग। कहते हैं कि कछु बिगड़ियो नाही अब हूँ जाग, कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी जाग जा, जो बीता सो बीता अब तो संभल जा, कि जो बीता सो बीता अब तो तू संभल जा, जो बीत गया हो उसमें तू क्या फेर बदल कर सकता है। पहले तेरी विपरीत भावनाएं थी तो ठीक है थी, लेकिन अब तो संभल जा, अब तो सवर जा, अब तो तू वो चाल चल ले। और इससे पहले कि देर हो जाए तो तूने ये जागृति प्राप्त कर लेनी है। कई इंसानों के पास ये भी बात कहने को होती है कि इस तरह से जो यहाँ आध्यात्मिकता और भक्ति के मार्ग की बातें हो रही हैं, ये जो पार उतारे की बातें हो रही हैं, ये जो मोक्ष और मुक्ति की बातें हो रही हैं, तो ये हमारे हिस्से में तो है नहीं। हम तो बहुत घोर अंधकार में जीवन जीते आ रहे हैं, हम तो इस तरह से डिसक्वालीफाई एक हिसाब से हैं। तो उनको ये भी कहना पड़ता है कि इस तरह से तो फिर कोई कोड़ा राक्षस, कोई चोर भूमिया, कोई गन का पापन, कोई सज्जन ठग, उनका भी उद्धार ना होता, उनके जीवन में भी ये रूपांतरण ना आता। लेकिन ऐसा है नहीं, जो बीता सो बीता, जो पहले लोहा था तो था, लेकिन पारस के साथ संग कर लिया, अब तो कंचन बन गया। अब लोहा कोई भी है, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो, ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। कि एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पुजारी के हाथ में है, वो मंदिर में उस लोहे का इस्तेमाल करता है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो, बदिक कहते हैं जल्लाद को या लुटेरे को, जिसके हाथ में लोहे की बनी हुई कटार है जिससे वो गले काटता है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो, ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। कि पारस के लिए कोई भेद नहीं है कि वो पुजारी का लोहा है या जल्लाद का लोहा है। अगर वो पारस का संग कर देता है तो वो कंचन बन जाता है। इसी प्रकार से ये भी अगर इंसान, ये भी अगर बहाना या दलील दे रहे हो कि मैं बिगड़ा हुआ तो मैं कहाँ पर भक्तों के श्रेणी में आ सकता हूँ, मैं कहाँ मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ, तो महापुरुष कहते हैं कि इस कारण भी अपने कदमों को ना रोक ले तो अवश्य संतों का संग कर। बल्कि महापुरुष यही तो कह रहे हैं, जैसे दास ने अभी जिक्र किया कि अंधकार उजाले में तब्दील हो जाए, और अगर अंधकार ये कहे कि मैं डिसक्वालीफाई हूँ उजाला बनने में क्योंकि मैं अंधकार हूँ, नहीं, अंधकार को उजाले में तब्दील होना है। दीपक जगेगा, अंधकार उजाले में तब्दील हो जाएगा। इसी प्रकार से एक बद नियत वाला था, लेकिन अब महापुरुषों की सोबत की, महापुरुषों की मति को धारण किया, तो अब वो बद नियत वाला नहीं, अब नेक नियत वाला बन जाएगा। इसी प्रकार से दानवीय चाल चलने वाला एक इंसानी चाल चलने वाला बन जाएगा। और इस प्रकार से कांटों का रूप जो छलनी करता रहा, वो अब फूल का रूप बन जाएगा, जो कि सुंदरता स्थापित करता है, जो कि महक देता है। तो अवसाद संगत, यही संदेश एक हर मानव, हर इंसान को महापुरुष संत जन दे रहे हैं, इंसान का हित करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए। हर किसी का पार उतारा हो, भव सागर से पार हो, इसलिए ये संदेश दिए चले जा रहे हैं। केवल लोक को ही संवारने की बात नहीं कर रहे, पर लोक को भी सुहेला करने के लिए, क्योंकि आत्मा भी मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करे, ये भी आवागमन के बंधन से निजात पाए। इसलिए आत्मा अपने मूल परमात्मा को जाने, ताकि आत्मा के भी भ्रम मिटें, ताकि ये भी मोक्ष और मुक्ति की पात्र बने, नहीं तो ये आवागमन के बंधन में पड़ी रहेगी। और इसलिए लोक को संवारने के साथ साथ परलोक सुहेला करें, ये भी महापुरुष जोर दे रहे हैं इस बात के ऊपर कि दोनों लिहाज से परलोक और लोक दोनों संवारने के लिए महापुरुष कह रहे हैं कि देरी मत करो, काल करंता अबे कर, अब करता सोयताल। कि आत्मा का कल्याण करने के लिए भी जितनी देर तेरे सांस हैं, इसके दौरान ही तूने ये मंजिल पा लेनी है, इसलिए उस हिसाब से भी देरी महंगी पड़ेगी। और लोक की यात्रा कर रहा है तो इस लोक को संवारने के लिए भी अभी ही तू संवर जा, इसको भी कल के मत छोड़, ये अभी तू संवर जा, यानी कि दोनों काम अभी से तू कर ले। इसलिए महापुरुष ये एक याद करा रहे हैं बार बार ये संदेश दे रहे हैं, बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं। तो आओ साथ संगत, यही शुभकामना, यही अरदास, यही प्रार्थना है कि दातार कृपा करे, आप सभी को भक्ति करने की शक्ति दे, और जिन एक पॉजिटिव पहलू या सुंदर रूप, जहाँ से दास ने बात आरंभ की थी कि एक सुंदर जीवन जीने की तौफीक दातार हर किसी को प्रदान करे, और आप संसार का भी उद्धार करते चले जाएं। सत्संग जी धन्य।